हेलो दोस्तों, मैं आरजे श्वेता आप सभी का ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम में तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं। तो दोस्तों, आप बताते हैं आपसे कि आज क्या है इंटरेस्टिंग हमारे स्टूडियो में और आज हम अपने प्रोग्राम में क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, सुनने के लिए कंटिन्यूसली आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो बात करते हैं कि स्टूडियो में आज खास है हमारे साथ कौन, गेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि मैम का एक सेशन हमने आपसे शेयर किया था और काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला भी था, तो इसीलिए मैम को आज हम दोबारा आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में और मैम ने बहुत ही अपना कीमती समय हम सबको दिया है। तो आइए मैम से हम लाभ लेते हैं और जानते हैं मैम के बारे में। तो तब से मैम कह रहे हैं दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि मैम का नाम तो बता ही नहीं रही आरजे, तो कोई नहीं, आइए हम पहले नाम बताते हैं आपको कि मैम का नाम है डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, जो कि मनोविज्ञान डिपार्टमेंट से हैं और बहुत ढेर सारी नॉलेज आज आपके लिए लेके आई है मैम। तो आइए सुनते हैं मैम को खास। तो मैम, आपका हम वेलकम करते हैं।
धन्यवाद श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने श्रोतागण जो एफएम के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ फिर से बुलाया गया है और मैंने वादा भी किया था कि मैं जब आऊँगी आपको एक बढ़िया जानकारी देकर जाऊँगी। तो मनोविज्ञान ये एक व्यवहार का विज्ञान है, सभी जानते हैं, यानी मनुष्य जो व्यवहार करता है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सामान्य व्यवहार तो अलग सी बात है, लेकिन देखा होगा कुछ एबनॉर्मल लोग, कुछ असामान्य लोग जो हमारे समाज में दिख रहे हैं, हम उनके बारे में जाने, अगर हम उनको जान जाते हैं तो हम उनसे दूर नहीं रहते, हम उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तो अपना कार्य करने में लगे ही हैं, लेकिन समाज के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उनके प्रति वो सजग रहे, उसे समझे। और अन्य जैसे शारीरिक सभी बीमारियां होती हैं, उसी तरह मानसिक बीमारियों को भी ले, हम उनको तिरस्कार न की दृष्टि से न देखें, हम उनको बिल्कुल अपना समाज का एक अंग समझें। और इस पर भी बात होगी कि कैसे चली आ रही थी पुरानी प्रथा और आज की प्रथा में क्या अंतर आ गया है। समाज इतना विकसित हो गया है कि अब जैसे शारीरिक बीमारियों का इलाज होता था, उसी तरह मानसिक बीमारियों का भी इलाज संभव है। बहुत सी असंख्य बीमारियां हैं जिनको कैटेगरी भी बनाई गई, यानी वर्गीकरण किया गया है कि ये किस वर्ग की बीमारी है। तो बहुत सी बीमारियों में, करें तो बहुत लंबा समय है, लेकिन आज मैं एक छोटा सा ओसीडी शब्द आपने सुना होगा, इसी ओसीडी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी आप तक साझा करना चाहूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ओसीडी लेके आई। तो हमारे लिसनर्स जितने भी सुन रहे हैं और उनको हम बता दें कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि ये कोई बीमारी है। तो आइए मैम को बहुत ही ध्यान से ध्यान लगा के सुनते हैं कि ओसीडी बीमारी होती क्या है मैम।
जी हाँ, ये एक बिल्कुल सामान्य सी बीमारी है। व्यक्ति घर में रहता है, सामान्य दिनचर्या के कार्य करता है, लेकिन उसी कार्य में कुछ कार्य और कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं जो उसके पूरे जीवन को बाधित कर देते हैं। सबसे पहले तो ओसीडी का फुल फॉर्म ही बता दूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति। अब शब्द आता है मनोग्रस्तता, यानी मन का कहीं ग्रसित रहना। तो मन क्या करता है, मन में ऐसे विचार आने लगते हैं व्यक्ति के मन में कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको सब पता है। व्यक्ति को ये भी पता रहता है कि वो जो सोच रहा है वो व्यर्थ है, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी उसके मन के ये जो विचार हैं, ऑब्सेशन है उसका, वो खत्म नहीं हो पाता। एक ऐसा विचार जो बार बार आता है, बिना कारण आता है, और मनोग्रसित बाध्यता जो ओसीडी है, ये एक चिंता विकृति का ही एक रूप है, उसी कैटेगरी की ये बीमारी है। जैसे एंजाइटी बीमारी है, उसी तरह ये उसी कैटेगरी की बीमारी ओसीडी भी है। तो चिंता विकृत की वर्ग में ही इसे सम्मिलित किया जाता है। मनोग्रस्तता एक प्रकार का वह विचार है जो नकारात्मक रूप लिए होता है, यानी जो भी व्यक्ति सोचेगा वो बुरा सोचता है, वो विचार निरंतर उसके मस्तिष्क में बना रहता है। वो समझता है कि उसका ये जो विचार आ रहा है वो व्यर्थ है। व्यर्थता को जानकर भी वह अपने मस्तिष्क के विचार जो आ रहे हैं उनको रोक नहीं पाता है। अब आपको एक उदाहरण बता दें कि जैसे हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं की बहुत गंदगी है। व्यक्ति को चारों ओर गंदगी ही दिखाई देती है, सभी जगह उसे लगता है गंदा है गंदा है। और ये विचार इतना ज्यादा उसे बार बार आने लगता है कि स्वयं को वह इन विचारों से रोक नहीं पाता। वो चारों ओर उसे गंदगी ही गंदगी दिखता है। वो चाहता है कि अपने को रोके, समझ रहा है कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी ये विचार उसके रुकते नहीं है। अब इन विचारों से बचने के लिए क्या करना शुरू कर देगा, वो अपना ही हाथ धोने लगता है। अपना हाथ धोने की प्रक्रिया एक बार नहीं, एक बार धोया साबुन से हाथ साफ हुआ, ये तो एक सामान्य लोग करते हैं कि चलो गंदा मेज छू ली थी हाथ धो लें, रुपए नोट गिने हैं हाथ छू लें। लेकिन वो जो रोगी होता है वो 20 बार 50 बार हाथ धो के भी संतुष्ट नहीं होता है कि उसका हाथ साफ है। तो अपने इन विचारों से बचने के लिए वो क्या करता है कि बार बार हाथ ही धोता रहता है। इसे ही बाध्यता कहा जाता है। तो मनोग्रस्तता बाध्यता का रूप धारण कर लेती है। पहले इसको अलग अलग मानते थे, कहते थे विचार अलग आ रहे हैं लेकिन काम कर रहा है, जैसे हाथ धो रहा है या कुछ कर रहा है तो ये अलग चीज है। लेकिन मनोग्रस्तता धीरे धीरे बाध्यता में बदल जाती है, यानी व्यक्ति के जो विचार हैं, जैसे गंदगी का जो विचार था व्यक्ति का, वो अब हाथ धोने में बदल गया, वो हाथ ही धोता रहता है। अब आपको बता दूं कि जो मनोवस्थता का रोगी होता है बहुत शक करता रहता है, वो जो भी काम करेगा उसको लगता है हुआ या नहीं हुआ। जैसे हो गया क्या, जैसे उसने ताला बंद किया, ताला बंद करने बंद करके आया लेट गया, फिर कहता है अरे मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया, अब उसको शक लगा रहेगा। वो फिर जाता है ताला चेक करता है, खींच के देखता है, नहीं, हो सकता है कि बाहर निकला, अब उसको लग रहा है गैस खुली छूट गई। फिर आया घर में देखा चेक किया गैस खुली तो नहीं है, फिर गया थोड़ी देर बाद, फिर उसको लगता है गैस खुली छूट गई। यही वो करता रहता है। तो ये क्या होता है, जीवन उसका कैसा हो गया, उसका जीवन जो है बाधित हो गया। उसकी सामान्य रह रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि जिसको हम आम भाषा में पागलों की संज्ञा दे दें, लेकिन फिर भी ये रोग मनोरोग में सम्मिलित किए गए हैं, ये मनोविकृतियां हैं। आज मुझे जो मैं यहाँ आई हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि सरल से सरल भाषा में लोगों को ये बता दें कि किस तरह से हमारे रोगी हमारे घर में ही बीच में हैं, हम उन्हें पहचाने। हो क्या रहा है कि शारीरिक बीमारियों को तो लोग समझ रहे हैं कि बुखार आया, पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, चलो डॉक्टर से दवा ले ले। तो होता क्या है, बुखार एक पहली सीढ़ी है, हम उसको दवा लेकर ठीक करते हैं। लेकिन इस तरह की जो बीमारियां हैं ओसीडी टाइप से, अगर इनको प्रारंभिक तौर पर जान लें, इनकी शुरुआत हो तभी अगर जान लें तो उससे बचा जा सकता है। हम अपने सगे संबंधियों में ये रोग देखते हैं, आस पड़ोस के लोग, मेरे पास ऐसी बहुत सी छात्राएं आती हैं, मेरी चाची तो पूरा पूरा साबुन खत्म कर देती हैं एक दिन में, तो पूरा क्लास हंसने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर रूप से विचार करने की बात है कि एक महिला बाथरूम में जाती है और तब तक नहाती है जब तक पूरा साबुन खत्म ना हो जाए, ये ओसीडी है। तो जन जन को ये जानना चाहिए कि इस तरह की अगर व्यवहार किसी में प्रारंभ में ही दिखाई दे तो तुरंत उसे रोकना है। मनोवैज्ञानिक पूरी तरह से लगे हुए हैं कि शुरुआती तौर पर अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये मनोविकृति है यानी मानसिक बीमारी है, तो इसको बड़े आराम से रोका जा सकता है।
जी मैम, आपने तो अभी बताया कि मतलब ये स्टार्ट हो जाती है बीमारी, और जैसे कि हाथ धुलने की बीमारी या शक की बीमारी, कई बीमारियां होती हैं, तो ये तो सिम्टम्स आपने बता दिए कि ओसीडी का ये सिम्टम्स है। तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बता दें कि ये स्टार्ट कब से होती है, मतलब ये ओसीडी जो बीमारी है वो मरीजों में प्रारंभ कैसे होती है।
ठीक है, सबसे पहले तो जितने लोग हैं घर परिवार के हों चाहे पड़ोस के हों, आप उनमें ये देखिए, अगर आपको कोई दिख रहा है कि व्यक्ति बेतुके विचार कर रहा है, विचार कर रहा है मतलब कुछ तो प्रारंभ में बताएगा ही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं चारों ओर गंदगी है गंदगी है, तो जब ज़्यादा इस तरह बोलने लगे या उसको लगे कि देखो मेरे साथ के जो लोग हैं वो बार बार चेक करते हैं गेट पे ताला बंद है कि नहीं बंद है, ऐसा थोड़ा करना। देखिए सामान्य और असामान्य की जब बात आए तो मैं फिर कहूँगी सामान्य और असामान्य में अंतर मात्रा का है। एक सामान्य व्यक्ति भी एक बार ताला बंद करने के बाद जा सकता है कि देखें, चेक करें ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, दो बार चेक कर ले, सामान्य है। लेकिन जब यही बार बार इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, लोगों को यही बताना है कि आप घर में रह कर भी जान सकते हैं कि आपके अगल बगल जो व्यवहार व्यक्ति कर रहा है वो कहीं से अधिक तो नहीं कर रहा। बस मात्रा अगर बढ़ती चली जाए किसी व्यवहार की, तो तुरंत जान लीजिएगा कि OCD आने वाला है। अगर व्यक्ति के विचार जो आ रहे हैं वो बेतुके होने लगे, विचार मन में जो है बार बार उसकी चिंता और तनाव उत्पन्न करने लगे, अगर व्यक्ति चाहे कि उनको नियंत्रण कर ले उन विचारों को, यानी जो बात दिमाग में आ रही है उसको रोके व्यक्ति खुद चाहता है, लेकिन वो उसके चाह कर भी विचार रुकते नहीं है। फिर वह व्यक्ति अगर काफी समय बेतुके विचारों में जो है अपना समय बहुत नष्ट कर रहा हो, तो जान लीजिए कि OCD की शुरुआत है। अगर उसके विचार कार्य में बाधा, जैसे उसको अभी कुछ पढ़ना है लेकिन दूसरे विचार उसके उस पढ़ाई को करने नहीं दे रहे हैं, या कोई महिला है उसको अभी खाना बनाना है लेकिन तब तक उसके दिमाग में दूसरा विचार कौंधे है लगातार चला जा रहा है, तो वो समझ जाए OCD का प्रारंभ है। अगर व्यक्ति जो है संदेही हो जाए ये है कि नहीं है, या फिर वो निर्णय ना ले पाए, जैसे कुछ ही बात का निर्णय, कोई भी बात उस कर निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाती है व्यक्ति की, तब समझ जाना चाहिए कि ये OCD की शुरुआत है। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के जो विचार हैं वो अतार्किक हो जाते हैं, यानी उसी से बात बढ़ती चली जाती है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा, फिर उसमें क्या होगा, नकारात्मकता यानी उस निगेटिविटी आती चली जाती है और व्यक्ति में उदासी दिखाई देने लगती है, व्यक्ति बार बार परेशान होने लगता है। उसके अगर उसे कहा जाए ये काम ना करो, एक चीज ये भी है समझने वाली कि अगर उसे कहा जाए कि आप ये काम ना करिए, तो वो बहुत अशांत हो जाएगा, एकदम बेचैन दिखने लगेगा और बहुत ज्यादा उसको असुविधा होने लगेगी कि कोई मुझे ये काम करने से क्यों रोक रहा है। इसी पर मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत फेमस थे, और उनको जो है ये ऑब्सेशन की बीमारी लग गई। उनको लगता था कि हर जगह इन्फेक्शन है, कीटाणु है। अब वो हर अपना जो रूम था उसको पोंछें, साफ करें, एक बार करें, दो बार, उनके हाथ में डस्टर हमेशा रहने लगा। उनके साथ जो काम करते थे वर्कर्स, उनसे सफाई की बात करें, हर समय सफाई का निर्देश देने लगे, तो किसी चीज़ की अति अति हर चीज़ की बुरी है, यही है OCD। तो जो चीज़ काम में अधिक बाधा पहुंचाने लगे, ऐसे विचार और ऐसे कार्य OCD हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं OCD से ग्रसित, अगर मैं बता दूं कि 100 व्यक्ति हैं, हमारे भारत देश का ये रिकॉर्ड है, 100 व्यक्ति हैं, तो उसमें 1.9 से 3.10% तक यह विकृति लोगों में पाई जाती है। ऐसा नहीं बहुत से रोगी हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है ना, हमारे समाज के लोग और ना व्यक्ति स्वयं ये मानने को तैयार होगा कि उसे OCD हुआ है।
जी मैम, ये तो आपने सिम्टम्स के साथ साथ हमें बता दिया कि ये आरंभ कब से होता है। तो अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम अपना, इसके कुछ कारण भी होते हैं जी, और जी। वो बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेरा।
जी बिल्कुल
जी, कारण बता दीजिए।
देखिए, सबसे पहला कारण तो इसका पाया गया हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अगर देखा गया, कई रिकॉर्ड हुए, जुड़वा बच्चों के भी किए गए, भाई बहनों के भी देखे गए, तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कह लें आनुवांशिकता, किसी को ये रोग है तो ये रोग होने की अगली पीढ़ी में संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात ये है असामान्यता की, कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर माता को है तो बच्चे को होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आनुवांशिकता अगर उसे मिली है और उसके साथ उसे वातावरण भी मिल जाए, यानी कोई दबावपूर्ण परिस्थितियाँ या उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में होता है कि ये रोग पनपने की संभावना और उनकी सामान्य की अपेक्षा
बढ़ जाती है।
दूसरी बात ये है कि यदि निकटस्थ कोई रिश्तेदार में है ये रोग OCD, तो भी पाया गया है। इसमें अनुकरण का सिद्धांत भी लगता है। अगर किसी को कोई व्यक्ति कुछ करते देखता है तो करना सीख जाता है, अनुकरण मतलब लर्निंग बाय इमिटेशन, वो देख कर भी वो कर सकता है, तो किसी रिश्तेदार में या किसी को करते देखता है तो ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण ये है कि मस्तिष्क में असमानता, यानी कि दे पाया गया, जैसे शल्य चिकित्सा की गई, ऑपरेशन किया गया, उसमें पाया गया कि जिन लोगों में ओसीडी है उनके मस्तिष्क की कुछ बनावट भी औरों से थोड़ा अलग पाई गई। तो मस्तिष्क की बनावट भी इस पर निर्भर करती है, जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क की बनावट अगर ओसीडी के लिए बन गई, उसमें कुछ बनावट आकार आया, तो ओसीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन एक इसके लिए किया जाता है। तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन से पता चलता है कि जो कुछ मस्तिष्क के ऐसे हिस्से हैं जहां स्थितियां ऐसी बनी होती हैं, उन व्यक्तियों को भी ओसीडी हो जाता है। इसी में मनोविश्लेषण साइकोएनालिटिकल के बारे में, यानी अगर असामान्यता की बात करें और हम फ्रॉयड की बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा। फ्रॉयड के विचारों के बिना तो हमारी असामान्यता का उपचार ही संभव नहीं है। तो फ्रॉयड ने इसका कारण क्या माना है कि फ्रॉयड ने माना कि जैसे कुछ अनुचित से मतलब जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, वो बातें अगर व्यक्ति के मन में आती हैं, कुछ सेक्स से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कुछ अन्य बातें जो जिसको समाज नहीं मानता है, हम सबके सामने वो चीज़ प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और व्यक्ति के मन में वो विचार अगर आ जाए, तो व्यक्ति के मन में जब वो विचार आते हैं तो उनको दबाता है। तो ये जो दमित इच्छा होती है, दमित भावनाएं जो होती हैं, वो होती क्या है, व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में चली जाती हैं। यानी व्यक्ति क्या होता है, उसका जो सुपर ईगो होता है वो उसको करने नहीं देता है क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता, तो वो इच्छा व्यक्ति के मन में दमित हो जाती है, दब जाती है। लेकिन फ्रॉयड ये मानते हैं कि कोई भी दमित इच्छा दमित रूप से मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती है, वो समय समय पर निकलने का प्रयास करती है, सामने आना चाहती है, और सामने आने का परिणाम क्या होता है, वो ओसीडी, वो मनोग्रस्तता, बाध्यता, विकृति के रूप में सामने आ जाती है। और एक तरह से ये देखा जाए, ओसीडी यानी व्यक्ति के जो विचार, या कुछ हाथ धोना, या अपने को नहाते रहना, या ताला बंद करना, या बहुत सी ऐसी क्रिया जो बार बार करता है व्यक्ति, हो सकता है ये उसका डिफेंस हो, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब अपने को सुरक्षात्मक प्रयास करना, उस विचार को दबाने के लिए वो इस तरह का विचार करता है। उसके मन में अगर कोई गंदा विचार या जो समाज स्वीकार नहीं करता है, ऐसी भावना अगर उसके मन में आती है, तो उसके सुरक्षात्मक प्रयास के रूप में, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, वो व्यवहार करना ज़्यादा पसंद करता है, और वो व्यवहार उसका असामान्य हो जाता है। ये व्यक्ति का जीवन उथल पुथल मचा देता है, अब व्यक्ति ना समायोजित रह पाता है। सबसे मुख्य तो जीवन का उद्देश्य है समायोजन
जी,
यानी परिवार में समायोजन, समाज में समायोजन, जहाँ वो जाता है ऑफिस में या जो वो कार्य करता है, तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो कहीं हो ही नहीं पाता, और जो होता क्या है, उसकी पूरा जीवन जो है वो बाधित होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, और व्यक्ति का जो विचार और ये जो क्रिया है वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है।
तो मैम ये तो बीमारी हो गई, और मुझे लग रहा है बहुत ही खतरनाक है ये, लेकिन लोग जानते नहीं है कि ओसीडी भी बीमारी,
सब इसको सामान्य व्यवहार समझकर जीते चले जा रहे
हैं कि अरे सामान्य है, उनके अंदर बहुत सफाई को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, इसलिए सफाई कर रही हैं। तो मैम अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि हम अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करें, इसको कैसे व्यवस्थित करें, कोई डाइट है कि कोई रूटीन है जिसको अप्लाई करके हम ओसीडी से बच सकते हैं या लोगों को बचा सकते हैं।
देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, मानसिक विकृति कोई भी हो, चाहे वो जैसी भी हो, अगर वो शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी है, तो इसका अर्थ ही है कि आपने अपनी जो दिनचर्या है या जो अपनी इच्छाएं हैं, ये बिल्कुल अव्यवस्थित कर रखी हैं। तो आपकी जो दिनचर्या हो वो व्यवस्थित हो, आपकी इच्छाएं, मैं फिर बाद में आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरह से ये असामान्यता का कारण आज की ये भाग दौड़ भरी जिंदगी और व्यक्ति की संतुष्ट न होना, ये जो व्यक्ति अब सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये सबसे बड़ा कारण हो गया। और दूसरा कारण ये हो गया कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाएं इतनी असीमित कर ली, लक्ष्य इतने ऊंचे बना लिए कि क्षमता नहीं है, उसके साधन नहीं है पाने के, लेकिन इच्छा ऊंची बनी हुई, लक्ष्य ऊंचे बने हुए, ये कारण है व्यक्ति में संतुष्ट न होने का। और जब संतुष्ट नहीं हो पाता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लक्ष्य पूरे नहीं होते, तो परिणाम क्या है? कुंठा। और इस तरह से दबी हुई जो भावनाएं हैं, कुंठा हैं, ये सब व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अगर व्यक्ति हो ही जाता है किसी बीमारी से ग्रसित, तो सबसे अच्छा एक उपाय बता दूं कि होता क्या है, मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या हम बता दें कि हमारे जो मस्तिष्क में है वो चार तरह के केमिकल होते हैं, डोपामाइन होता है, ऑक्सीटॉक्सिक होता है, सेरोटाइन होता है और एंडोर्फिन है। ये हमारे हार्मोन्स हैं मस्तिष्क के। इनमें अगर डिसबैलेंस होता है तो फिर असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी शरीर की जो ऊर्जा खर्च होती है, जो हमें शक्ति देती है, वो 90% हमारे शरीर को ऑक्सीजन से मिलती है, और 10% है हमने क्या खाया। 10% हमारा खाना लेता है ऊर्जा और 90% ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पूरी शरीर में, और शरीर से सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन बहुत सही पहुँचे, जिसके लिए सबसे अच्छा है योगा। अगर लंबी सांस लें, इसके लिए सबसे अच्छा ज़रूरी है गहरी सांस लेना। जो हम रोज की सांस दिनचर्या में लेते हैं, ये एक उथली सांस है। इससे ऑक्सीजन सामान्य रूप से सब सही चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मस्तिष्क में हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है तो हमें गहरी सांस लेनी पड़ेगी। मैं ये चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में ये शामिल कर लेना चाहिए कि वो लंबी गहरी सांस ले, ताकि जितनी हमारी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनमें वो ऑक्सीजन अंदर जा सके। ऑक्सीजन की मात्रा सही रहेगी तो हमारे मस्तिष्क के ये जो हमारे केमिकल हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन या एंडोर्फिन्स, ये बैलेंस रहेंगे। क्योंकि जो डोपामाइन है ये हमें फील गुड का एहसास कराता है। अगर बैलेंसिंग है, डोपामाइन सही है, तो हम अच्छा महसूस करेंगे, फील गुड। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा, वो एक लव हार्मोन्स है। बेटा माँ को प्यार करेगा, बेटी अपनी माता को प्यार करेगी, पिता अपनी बेटी को प्यार करेंगे, कोई दो लोग आपस में भी प्यार मोहब्बत से रह सकेंगे, तो इससे क्या होगा, जीवन सामान्य होगा। सेरोटोनिन क्या होता है, ये डिप्रेशन में महत्वपूर्ण है। सेरोटोनिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। तो व्यक्ति को सामान्य रूप से रखने के लिए, मस्तिष्क में सेरोटोनिन की डिप्रेशन से बचने के लिए भी सेरोटोनिन की मात्रा का बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। एंडोर्फिन्स क्या करता है, पॉजिटिव फील कराता है, हर चीज़ में पॉजिटिव। और मैं तो चाहूँगी खूब अच्छी ऑक्सीजन व्यक्ति को मस्तिष्क में मिले, तो वो एंडोर्फिन्स यानी उसको हर चीज़ में पॉजिटिव दिखाई दे। तो यदि ये सारे हार्मोन्स जो हैं बैलेंस नहीं होंगे तो सिस्टम क्या होगा, वो बिगड़ जाता है। और इन जो ये जो केमिकल्स हैं, ये पूरा जीवन व्यक्ति का बदल कर रख देते हैं। इनका प्रभाव जानती हैं कहाँ कहाँ पड़ता है, ये जो हमारा मूड स्विंग करता है, सोशल बिहेवियर है, या एपिटाइट हमारी है, डाइजेशन है, स्लीप है, हमारी मेमोरी है, इन सब में इन जो हार्मोन्स हैं इनका रोल है। तो मैं चाहूँगी ये जो आपका रेडियो है, हमारे कॉलेज का 89.6 FM, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं अपनी बात पूरे लोगों को बता सकूँ, जन जन तक पहुँचे। इन श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं वो खुद इसका लाभ उठाएं, अपने आने वाले जो लोग पीढ़ी है उनको ये बताएं, आसपास के लोगों को देखें, उनको ये OCD या जो बीमारियां मैं शेयर करती रहूंगी कि कैसे इनसे बचा जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जानकारी, अगर हम उस चीज़ को जान जाएं तो बचना तो बहुत आसान हो जाएगा
जी। मैं
फिर तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है ही इस सब के लिए
जी। और आप भी हैं हमारे रेडियो के माध्यम से, आप अच्छी अच्छी नॉलेज देती हैं, तो आई होप लिसनर्स आपको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज आपने प्राप्त की हैं। और जैसा कि OCD आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज आपको पता चल गया है, और जिनको पहले से पता था तो वो अब ध्यान दे दें कि आसपास ऐसा कुछ अगर केस है तो आप उनकी हेल्प कर दें और उनको थोड़ा सा योग बताएं, जिनसे कि वो फ्रेश रह सकें और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकें।
थैंक यू।
तो मैम आज आप आई तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा सब्जेक्ट और लेसन आपने हमें दिया है, तो बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम ज्ञानसली टीम पूरा। तो दोस्तों मिलिएगा मैम से अगले सेशन में, और बताइएगा आप मैसेज करके चैट रूम में कि आपको कैसा लगा मैम का ये सेशन। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानसली रेडियो 89.6 FM।
ये है गोंडा शहर की धड़कन, थक थक।